एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम कनाडा की एक जानी मानी समकालीन लेखिका मैडलिन थियन, उनकी दुनिया में झांक रहे हैं। वैंकूवर में जन्मी हैं और उनके माता पिता मलेशियाई चीनी मूल के थे, तो उनकी लिखाई में अक्सर ये चीज़ें दिखती हैं, स्मृति, इतिहास, कला, पारिवारिक रिश्ते और इन सब पर जो राजनीतिक उथल पुथल या प्रवास का असर होता है।
जी, और उनकी एक खासियत है, मतलब वो पूर्व और पश्चिम की कथा शैलियों को बड़े अच्छे से मिलाते हैं।
हाँ, बहुत लोग उन्हें उनके उपन्यास डू नॉट से वी हैव नथिंग से जानते होंगे, वो काफी चर्चित रहा था।
बिल्कुल, उसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई।
लेकिन आज हम उस उपन्यास पर नहीं बल्कि उनकी पहली कहानी संग्रह सिंपल रेसिपीज जो 2001 में आई थी उसमें से एक कहानी है, द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। बहुत ही मार्मिक कहानी है।
हाँ, और ये कहानी वैंकूवर में सेट है, पहली और दूसरी पीढ़ी के जो अप्रवासी परिवार होते हैं उनके जीवन को दिखाती है।
इसमें वो सांस्कृतिक तनाव, अनकहा दुख और खासतौर पर किसी हानि से उभरने के जो तरीके होते हैं वो बड़े अनोखे ढंग से दिखाए गए हैं।
जी, वो अप्रवासी अनुभव की पृष्ठभूमि है जहाँ पुरानी यादें और नई सच्चाइयाँ अक्सर टकराती हैं, एक अजीब सा तनाव रहता है।
बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी की गहराई में उतरें, समझें कि शोक, स्मृति और दुख को जाहिर करने के ये अनोखे रास्ते क्या हैं।
कहानी का जो केंद्रीय विचार है वो ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना?
हाँ बिल्कुल।
अपनी पत्नी की मृत्यु के ठीक बाद एक पिता अचानक फैसला करता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का,
सबसे लंबे समय तक लगातार गाने का रिकॉर्ड।
जी, जरा सोचिए उस सीन को। पिता ने खुद को लिविंग रूम में बंद सा कर लिया है, सामने एक लॉग बुक है, घड़ी चल रही है, गरम चाय का थर्मस है और वो बस गाना शुरू कर देते हैं, कई दिनों तक चलने वाला मैराथन।
ये तैयारी ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जैसे कोई बहुत बड़ा दुख है तो उसका इजहार भी उतना ही बड़ा होगा।
वही, और यही कहानी सवाल उठाती है, क्या ये सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की जिद है या कुछ और?
हाँ, मतलब ये बाहरी लक्ष्य रिकॉर्ड तोड़ना वो उतना जरूरी नहीं लगता जितना कि
वो अंदरूनी संघर्ष, उस परिवार का अपने दुख को एक तरह से जुबान देने का संघर्ष।
हाँ, आपने पिता की बात की, उनका ये लगातार गाना ये क्या दिखाता है?
ये गाना असल में उनकी दिवंगत पत्नी को एक श्रद्धांजलि है, एक मौन श्रद्धांजलि। उन्हें खुद गाना बहुत पसंद था।
अच्छा,
तो ये उनके उस दुख को आवाज देने की कोशिश है जिसे वो कह नहीं पा रहे। शब्द नहीं है तो सुर है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जीवन को कैसे मापते हैं या गुजरे हुओं को याद कैसे करते हैं,
क्या गिनीज बुक जैसे बाहरी पैमानों से, संख्याओं से,
या फिर याद करने के उन निजी अंदरूनी तरीकों से जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
बिल्कुल, कहानी के किरदारों में भी ये दिखता है। शांत पिता,
उनकी बेटी जो कहानी सुना रही है बहुत संवेदनशील है,
उसका भाई जूकलियांग जो थोड़ा
अलग है,
हाँ ज्यादा यथार्थवादी, और बेशक माँ की याद जो ना होकर भी हर जगह मौजूद है।
चलिए इन किरदारों को थोड़ा और समझते हैं। पिता, उनका चरित्र बड़ा परतदार लगता है।
जी, शांत हैं, संयमित हैं, उनका अतीत बोर्नियो से जुड़ा है और वो भावनात्मक रूप से थोड़े बंद से लगते हैं।
जैसे आपने कहा था, मौन की चादर ओढ़े पिता, अपना दर्द आसानी से बयान नहीं कर पाते।
बिल्कुल, तो ये रिकॉर्ड तोड़ने की जो उनकी प्रेरणा है वो पहली नजर में शायद लगे कि भाई मशहूर होना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन कहानी जैसे आगे बढ़ती है लगता है मामला ज्यादा निजी है, गहरा है।
हाँ, ये एक निजी अनुष्ठान जैसा है, कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं।
अच्छा,
वो और उनकी पत्नी दोनों को संगीत पसंद था, गाना उनके साथ बिताए पलों का हिस्सा था।
तो ये रिकॉर्ड की कोशिश सिर्फ एक नंबर पाने के लिए नहीं है, ये पत्नी की याद को जिंदा रखने का तरीका है। उनके जाने से जो खामोशी आई है उसे उनके पसंदीदा संगीत से भरने की कोशिश,
और शायद उस थकान में, उस धुंधलके में उन्हें फिर से महसूस करने की एक उम्मीद।
हाँ बिल्कुल, उनकी आवाज जो शायद उम्र भर दबी रही अब वही उनके प्यार और दुख का जरिया बन जाती है।
और दिलचस्प बात यह है कि वो बदलते नहीं है, मतलब अचानक से बहुत बोलने वाले नहीं बन जाते।
नहीं,
लेकिन उनका ये एक्सट्रीम कदम बच्चों को, खासकर बेटी को, उनकी भावना की गहराई समझा देता है, जैसे वो अपने अंदरूनी तूफान को संगीत में ढाल रहे हों।
सही कहा।
अब बेटी की बात करें, कथावाचक, वो तो कहानी की आंखें और कान हैं।
बिल्कुल, एक युवा लड़की है, नाम नहीं पता हमें उसका, वो कहानी की भावनात्मक धुरी है, उसकी यात्रा है समझने की।
नन्नी आंखों से देखती दुनिया।
हाँ, शुरुआत में तो वो पिता के इस अजीब काम को बच्चे जैसे देखते हैं ना, हैरानी से, वैसे देखती है। जो कहा जाता है करती है, लॉग बुक में टाइम लिखना, गाने का नाम लिखना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसका नजरिया बदलता है, वो ज्यादा गहराई से देखने लगती है, सहानुभूति आने लगती है। वो महसूस करती है कि पिता जो गा रहे हैं वो गाने ऐसे ही नहीं चुने गए।
अच्छा।
वो उन गानों को माँ की यादों से, बोनियों के अतीत से जोड़ने लगती है। उसका विकास बड़ा खामोश है, वो सिर्फ फैक्ट्स रिकॉर्ड करने वाली से भावनाओं को समझने वाली बन जाती है।
दिल की बात पढ़ने वाली।
हाँ, उसे एहसास होता है कि वो गिनीज के लिए नहीं लिख रहे, वो तो पिता के इस प्रेम और शोक के अनुष्ठान की गवाह बन रही है।
वो परिवार के असल रिकॉर्ड की रखवाली कर रही है।
बिल्कुल, उस भावनात्मक इतिहास की जिसे स्टॉपवॉच से नहीं माप सकते, वो सच में शब्दों के परे भावनाओं को समझती हुई लगती है।
और माँ वो है नहीं कहानी में, पर उनकी मौजूदगी शायद सबसे ज्यादा महसूस होती है।
हाँ बिल्कुल, उनका पूरा चरित्र परिवार की यादों से बनता है, बेटी की बातों से, पिता के गानों से।
पता चलता है कि वो जिंदा दिल थीं, प्यार करने वाली थीं, संगीत उनमें रचा बसा था।
जी, और गाने का उनका यही शौक पिता के इस मैराथन की वजह बनता है।
वो उस गर्मी, उस खुशी का प्रतीक है जो परिवार ने खो दी है, सचमुच स्मृतियों में जीवित माँ।
बिल्कुल, पिता का ये पूरा प्रयास उन्हीं को एक श्रद्धांजलि है। वो जो गीत चुनते हैं, पुराने प्रेम गीत, भजन, सब कहीं ना कहीं माँ की यादों से जुड़े हैं।
जी,
उनकी कमी एक महसूस होने वाली ताकत है कहानी में, जैसे संगीत में बसी यादें।
और फिर है भाई जुलियांग, वो एक अलग नजरिया लाता है।
हाँ, वो अपनी बहन के सहानुभूति के मुकाबले थोड़ा अलग खड़ा दिखता है, ज्यादा व्यवहारिक है।
हाँ, शायद पश्चिमी सोच में ज्यादा ढलावा, यथार्थवादी सोच वाला भाई कह सकते हैं।
जी, शुरू में तो वो पिता के इस काम को एक टीनेजर जैसे देखता है ना, शक से, थोड़ी शर्मिंदगी से,
कि ये क्या अजीब हरकत है।
हाँ, वो ज्यादा जमीनी है, कम भावुक। लेकिन दिलचस्प ये है कि कहानी के आखिर तक आते आते वो भी इस सब के असर से बच नहीं पाता।
अच्छा।
वो भी पिता की सेहत के लिए फिक्र दिखाने लगता है।
उसकी भूमिका शायद पीढ़ी के अंतर को भी दिखाती है कि अगली पीढ़ी दुख से निपटने के इन तरीकों को कैसे देखती है।
हाँ, और एक ही घर में दुख को महसूस करने और जाहिर करने के कितने अलग अलग ढंग हो सकते हैं।
तो कहानी शुरू होती है पिता की उस घोषणा से, बड़ी सीधी सादी पर सुनने में अजीब, गिनीज रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
और घर में सन्नाटा छा जाता है।
लिविंग रूम धीरे धीरे स्टेज बन जाता है, कुर्सी, घड़ी, लॉग बुक, थर्मस, माहौल बड़ा शांत, तनाव भरा, अवास्तविक सा।
जी, और पिता का वो शांत निश्चय उनके रोज के व्यवहार से एकदम अलग।
ये पहला इशारा है कि ये कोई मामूली बात नहीं है।
और फिर शुरू होता है वो स्मृति का मैराथन। पिता गाना शुरू करते हैं। कहानी दो स्तरों पर चलती है, एक तो वर्तमान, बेटी ध्यान से सब कुछ दर्ज कर रही है, हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक, क्या खाया, कौन सा गाना गाया।
पिता की आवाज में थकान आने लगती है।
हाँ, वो कमजोर पड़ने लगती है। और साथ ही साथ जैसे ही कोई गाना शुरू होता है, अतीत की यादें खुलने लगती हैं।
फ्लैशबैक।
जी, बोर्नियो में पिता का बचपन, माँ से प्यार, कनाडा आना, खुशी के पल, और फिर माँ की बीमारी, आखिरी दिन, वो दर्दनाक यादें।
ये कमाल का है कि कैसे गाना वक्त में एक पुल जैसा बन जाता है।
हाँ, दर्द भरे आज को एक प्यारे अतीत से जोड़ता है।
और जैसा आपने कहा, बेटी की रिकॉर्डिंग भी बदल जाती है, वो सिर्फ आंकड़े नहीं लिखती।
नहीं, वो समझने लगती है कि ये गाने ऐसे ही नहीं है, ये तो पिता की अपनी पत्नी के साथ की जिंदगी की प्लेलिस्ट है,
जिसे वो दुनिया को नहीं, शायद खुद को सुना रहे हैं।
हाँ, या पत्नी की याद को। संगीत यहाँ सिर्फ आवाज नहीं, सुनी जा सकने वाली याद बन जाता है। हर धुन, हर बोल कुछ कहता है। लेकिन कहानी में मोड़ आता है जब ये निजी चीज पब्लिक तमाशा बनने लगती है।
हाँ, जब खबर फैल जाती है।
जी, रिकॉर्ड के करीब पहुंचते हैं तो मीडिया आ जाता है, रिपोर्टर, पड़ोसी, भीड़ लॉन पर जमा हो जाते हैं।
जो चीज परिवार के लिए शोक का एक निजी तरीका थी, वो बाहर वालों के लिए अजूबा बन जाती है।
ये बाहरी दखल पिता की उस अंदरूनी यात्रा के ठीक उलट है।
ये कॉन्ट्रास्ट बहुत तीखा है, एक तरफ कैमरों का प्रेशर, लोगों की उम्मीदें,
और दूसरी तरफ पिता की थकान, यादों का बोझ,
और इस दोहरे दबाव में वो टूटने लगते हैं।
हाँ, गाना लड़खड़ाता है, वो भ्रम में चले जाते हैं, पत्नी से बातें करने लगते हैं जैसे वो वहीं हो।
बेटी उस वक्त अपने पिता को बिल्कुल असहाय देखती होगी, उस मजबूत दिखने वाले पिता के पीछे का टूटा हुआ इंसान।
बिल्कुल, दुनिया को रिकॉर्ड चाहिए, एक नंबर चाहिए, पर वो तो अपनी यादों में खोए हैं।
बाहरी दुनिया का पैमाना कितना अलग है।
और आखिर में वही होता है जिसका डर था।
उनकी आवाज जवाब दे जाती है।
रिकॉर्ड तोड़ने से बस कुछ घंटे पहले वो खामोश हो जाते हैं।
रिकॉर्ड नहीं बनता।
नहीं, और जैसे ही ये होता है, रिपोर्टर चले जाते हैं, भीड़ छन जाती है, वो प्रसिद्धि की चमक बुझ जाती है।
और परिवार रह जाता है उस गहरी खामोशी में कई दिनों के लगातार गाने के बाद।
कोई ट्रॉफी नहीं, गिनीज बुक में नाम नहीं, बज़ाहिर तो ये एक नाकामी है,
लेकिन यही इसी असफलता में कहानी का सबसे गहरा मतलब सामने आता है।
जी, बेटी को एहसास होता है और शायद पढ़ने वाले को भी कि लक्ष्य कभी रिकॉर्ड था ही नहीं।
असल लक्ष्य था वो याद करने का काम, पत्नी की याद को थामे रखने की वो कोशिश।
पिता का वो गाना सांस और आवाज से बना प्यार का एक स्मारक था, एक श्रद्धांजलि।
और बेटी जब अपनी लॉगबुक देखती है, वो समझती है कि असली रिकॉर्ड तो इन पन्नों में है।
हाँ, एक ऐसे प्यार का सबूत जो किसी बाहरी माप से कहीं ज्यादा बड़ा है।
कहानी इसी शांत उदासी पर गहरी समझ पर खत्म होती है। परिवार उस अनकहे ज्ञान में एक हो जाता है। ये वाकई असफलता में छिपी सफलता है,
जहां बाहरी मापदंड हार जाता है और अंदर का अर्थ जीत जाता है।
ये हमें कहानी के मुख्य विषयों पर लाता है। पहला तो है स्मृति और स्मरण।
जी,
पिता का गाना याद करने का एक सक्रिय, एक फिजिकल रूप है। ये मेमोरी को जिंदा रखने के लिए जैसे एक सहन शक्ति की परीक्षा हो।
थेन दिखाती है कि स्मृति सिर्फ कोई रखी हुई चीज नहीं है, उसे जीना पड़ता है।
हाँ, उसका प्रदर्शन करना पड़ता है। बेटी की लॉगबुक उसी प्रदर्शन का दस्तावेज है। सवाल यही है, यादों को जिंदा कैसे रखें, सिर्फ सोचकर या उन्हें जीकर?
और इसी से जुड़ा है अकथनीय दुख का विषय, कैसे बड़े दुख के सामने शब्द कम पड़ जाते हैं।
बिल्कुल, पिता कम बोलने वाले हैं, वो कह नहीं पाते, तो उन्हें गाना पड़ता है। उनका मैराथन उस दुख का प्रतीक है जो इतना बड़ा है कि कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कराया जा सकता है।
हाँ, कभी कभी सबसे गहरी चीखें मौन होती हैं या संगीत बन जाती हैं।
तीसरा पॉइंट है विरासत और उपलब्धि, जिंदगी को मापने के दो अलग पैमाने।
जी,
गिनीज बुक बाहरी, सार्वजनिक संख्या वाला पैमाना,
और पिता का प्रयास निजी, आंतरिक, भावनात्मक। और थियन पिता को फेल कराकर भारी तारीफ के सतहिता पर सवाल उठाती हैं।
वो एक अलग तरह की विरासत की बात करती हैं, जो प्यार, समर्पण, याद पर बनी हो।
तो सवाल फिर वही, जीवन का असली मोल किस में है, बाहरी पहचान में या भीतरी समर्पण में?
और चौथा है आवाज, मौन और पहचान। कहानी आवाज और खामोशी के बीच खेलती है।
पिता घर के सन्नाटे को अपने गाने से तोड़ते हैं, अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं, असल आवाज भी और अपनी पहचान की आवाज भी।
गाना उन्हें उनके अतीत से, उनकी पहचान से जोड़ता है। बेटी का काम है सुनना और लिखना।
कहानी कहती है कि अपनी आवाज ढूंढना, चाहे गाकर या समझकर, दुख से उभरने और पहचान बनाने के लिए जरूरी है।
जैसे आपने कहा, उनके गीत ने खामोशी को भर दिया, उसे मतलब दिया।
अगर हम कहानी कहने के अंदाज पर बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन में है, बेटी की नजर से।
हाँ, इससे हम कहानी के बहुत करीब महसूस करते हैं।
और क्योंकि वो धीरे धीरे समझ रही है तो रहस्य बना रहता है, अर्थ धीरे धीरे खुलता है, आवाज कोमल है पर गहरी है।
हाँ, कहानी की बनावट भी लीनियर नहीं है, सीधी नहीं चलती।
हाँ, नॉन लीनियर, वर्तमान और अतीत के बीच आती जाती रहती है,
जैसे हमारी यादें काम करती हैं।
बिल्कुल, और रफ्तार धीमी है, जो पिता के उस लंबे प्रयास को दिखाती है। भावनात्मक बोझ धीरे धीरे महसूस होता है।
और प्रतीक, कहानी भरी पड़ी है प्रतीकों से।
हाँ, गिनीज बुक बाहरी मान्यता का प्रतीक,
और उसके उलट पिता का गाना प्रेम, स्मृति, सहन शक्ति, दर्द की चीख भी और उत्सव भी।
और वो लॉग बुक, वो गिनीज बुक का जवाब है। गिनीज बुक में नंबर होते, इसमें भावनाएं हैं, पिता की कांपती आवाज, गानों का मतलब, बेटी के एहसास।
ये भावनात्मक सच्चाई को दर्ज करने का महत्व बताती है।
जी, और थियन का लिखने का अंदाज, बिंब बहुत अच्छे हैं, पिता की आवाज के वर्णन।
हाँ, छोटे बंद कमरे के बिंब और उसके सामने बोर्नियो की खुली जादें, वो कंट्रास्ट भी अच्छा है।
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमें याद दिलाती है कि प्यार और दुख के जो सबसे गहरे रूप होते हैं, वो अक्सर बाहरी मापतोल से परे होते हैं।
हाँ, और कई बार वो अजीब लगने वाले कामों में छिपे होते हैं।
बिल्कुल।
और ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे कला, चाहे वो बस घर में गाना ही क्यों ना हो, वो यादों को सहेजने और किसी के जाने से जो खालीपन आता है उसे भरने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन सकती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।